آپ ہیں SBS ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر.
نمسکار مترو, بس گرمی آ گئی ہے, بہت گرمی بھی ہو رہی ہے اور آسٹریلیا میں گرمیوں کے موسم کے ساتھ کئی بادھائیں بھی آتی ہیں. کبھی باڑھ آتی ہے, بش فائرز کے بارے میں آپ لوگ سب پریچت ہیں, کبھی لوگ سمندر میں ڈوب جاتے ہیں جن کو تیرنا نہیں آتا. لیکن نیو ساؤتھ ویلز میں ایک بہت ہی اچھی سیوا ہے, اسٹیٹ ایمرجنسی سروس. اس میں کئی والنٹیئرز ہوتے ہیں جو لوگوں کی ہر دم مدد کے لیے تتپر رہتے ہیں. ایسے ہی ایک اسٹیٹ ایمرجنسی سروس والنٹیئر ہیں ونے کمار جی, جو آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. نمستے ونے جی.
نمسکار کمار جی, آپ کا بہت بہت دھنیواد مجھے مدد کرنے کے لیے.
جی, ہمیں خوشی ہے کہ آپ نیو ساؤتھ ویلز کی اسٹیٹ ایمرجنسی سیواؤں میں بھاگ لے رہے ہیں. اور کیا ایک سال سے کر رہے ہیں آپ؟
میں آلموسٹ 4-5 سال سے ایز اے اسپاٹ والنٹیئر کام کر رہا تھا, پر لاسٹ ایئر میں نے ایز اے یونٹ والنٹیئر ایز اے فل ٹائم سارٹ آف جوائن کیا ہے. اس میں میرے کو ابھی ٹریننگ کرنی پڑ رہی ہے, میرے کو سیکھنا پڑ رہا ہے. جو اسپاٹ والنٹیئر میں کوئی بھی آ کے وہاں پر کام کر سکتا ہے, وہ فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ کال کرتے ہیں کہ ہم کو کچھ لوگوں کی ضرورت ہے, اور کوئی بھی آ کے وہاں پر کال کر سکتا ہے. بٹ ایک بار آپ ایز اے یونٹ والنٹیئر رجسٹر ہو جاتے ہیں تو آپ کو ٹریننگ ان کا پروسیجر فالو کرنا پڑتا ہے.
تو یہ ٹریننگ کتنی لمبی ہوتی ہے؟
ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنا ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں اور کس لیول پہ جانا چاہتے ہیں. ابھی اس سمے میں چین سو کی ٹریننگ لے رہا ہوں اور اسٹورم آپریشن کے لیے ٹریننگ لے رہا ہوں. اس میں ڈفرینٹ لیولز ہیں, اپنے لیول کے حساب سے آپ جتنا جس لیول پہ پہنچ سکتے ہیں آپ اس لیول پہ بھی, کیونکہ یہ ایک گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ ہم سب لوگ سیف رہیں, انکلوڈنگ دا والنٹیئرز آلسو. اس رجسٹر ٹریننگ آرگنائزیشن ہے, ہر کچھ بھی چیز کرنے سے پہلے ہمیں اس کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے.
تو یہ بتائیے کہ آپ تو ٹریننگ کر رہے ہیں اور کافی سمے سے ہے اور ایک سال سے آپ اسپاٹ والنٹیئر بھی ہیں, تو کوئی نئے لوگ جوائن کرنا چاہیں تو ان کے لیے کیا کوالیفیکیشن ضرور ہوتی ہے؟
ایس سی ایس جوائن کرنے کے لیے کوئی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی آسٹریلین سٹیزن اور پرماننٹ ریزیڈنٹ بنا کسی پرابلم کے جوائن کر سکتا ہے. اگر آپ کے پاس ٹیمپریری ویزا ہے تب ہی آپ جوائن کر سکتے ہیں, ایز فار ایز کہ آپ کا جو ویزا کہتا ہے کہ آپ اس میں پیڈ ورک کر سکتے ہیں تو آپ کو والنٹیئر ورک کرنا بھی الاؤڈ ہے. ایج وائز منیمم ایج 16 سے 17 ہے, پر 16-17 کے لیے آپ کو پیرنٹل پرمیشن لینی ضروری ہے اور 17 کی عمر میں ٹریننگ شروع کر سکتے ہیں.
اچھا اچھا, یہ تو اچھی بات ہے. اور یہ بتائیے کہ آپ یہاں لگ بھگ 20 سالوں سے ہیں؟
ہاں جی.
ہاں, تو آپ کو کیسے انسپریشن ملی کہ آپ اس اسٹیٹ ایمرجنسی سروس میں والنٹیئر بنے؟
بڑی انٹرسٹنگ کہانی نہیں ہے.
اچھا,
اباؤٹ 5 سال پہلے میں بلو ماؤنٹینس میں بچوں کے ساتھ واکنگ کر رہا تھا. ان دنوں ایک اٹالین بش واکر وہاں کھویا ہوا تھا, اینڈ ان دنوں کچھ والنٹیئر وہاں کام کر رہے تھے. 3 دن کے بعد نیوز میں دیکھا دے وہ اسٹل لکنگ فور, دے ایونچولی انہوں نے ان کو ڈھونڈ لیا تھا. تو بڑا اچھا لگا دیکھ کر کے لوگ کتنا سمے اسپینڈ کرتے ہیں, کتنا ڈیڈیکیشن ہے ان میں. اور جیسے میں نے بتایا, میں شملہ میں پیدا ہوا تھا, سارا بچپن پہاڑوں میں بیتا ہے, تو اس کو دیکھ کے لگا میرے پاس بھی ایکسپیرینس ہے کہ میں لوگوں کی ہیلپ کر سکتا ہوں بش میں. تو اس کو لے کر شروع کیا تھا میں نے ان کے بارے میں جانا. پر جب میں نے معلوم کیا کہ یہ کیا کرتے ہیں, ایک ڈفرینٹ طرح کی کمیونٹی تھی. بش ریسکیو تو ان کے بہت چھوٹا سا پارٹ ہے, مینلی جو اسٹورم سونامی اور فلڈ ریسکیو کے جابس آتے ہیں.
اینڈ بش فائر بھی ہوگا اس میں؟
بش فائر کے لیے نارملی RFS فائر سروس دیکھتی ہے, پر SES والنٹیئرز وہاں پہ लॉजिस्टिक्स में हेल्प करते हैं, उनके कभी कभी कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। SES वॉलेंटियर्स आर उनको फायर फाइटिंग में ट्रेनिंग नहीं दी जाती,
वरना हैंड्स ऑन जॉब आपका फ्लड वगैरह में बुश वॉकर्स के लिए होता है क्या?
एक बहुत छोटा सा पार्ट है बुश वॉकर्स को रेस्क्यू करने का। एग्जाम्पल के लिए मैं पेंडिथ यूनिट में पिछले साल में हमारी ऑलमोस्ट 1090 कॉल्स हमने रिसीव की हैं हेल्प के लिए।
अच्छा।
उसमें से 800 कॉल्स स्टॉर्म डैमेज के लिए थी, उसमें पेड़ों का छतों पे गिर जाना, छतों का लीक करना, पेड़ों का सड़क के ऊपर गिर जाना, मेनली जब हवा तेज चलती है, हवा तेज बारिश तेज आती है तो लोगों की छतें लीक करनी शुरू हो जाती हैं। तो हमारी मेन जॉब है कि लोगों के लिए सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना, कि अगर लोग वहाँ अभी रह रहे हैं तो उनको गाइड करना कि वहाँ पे रहना सेफ है और हम किस हद तक मदद कर सकते हैं। हम टेम्परेरी रिपेयर्स करते हैं, हम छतों के ऊपर तरपाल वगैरह डाल के और अगर पेड़ गिरता है उसको हटा के, या जो स्ट्रक्चर्स डैमेज हो गए हैं उनको टेम्परेरीली सिक्योर करते हैं ताकि कोई और जितना डैमेज ऑलरेडी हो चुका है उससे और ज्यादा डैमेज ना हो पाए।
अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी सेवा है। तो अगर लोग स्टॉर्म डैमेज के लिए मदद चाहें तो वो कहाँ कॉल कर सकते हैं?
उसके लिए जब फोन नंबर है 1325 मैं दोबारा रिपीट करता हूँ 132500
जी।
पर अगर आपकी जान को खतरा है तो आप प्लीज कॉल 000।
अच्छा,
देन उसमें केवल SES नहीं और एजेंसीज भी आपकी मदद के लिए आ सकती हैं इन केस आपके, सो उसमें पुलिस, एम्बुलेंस, अगर उसमें दे कैन डिसाइड के वो देख सकते हैं कि खतरा किस तरह का है एंड वो डिसाइड कर सकते हैं कि उसके लिए हमें उनको पुलिस को भेजना है या एम्बुलेंस को भेजना है कि SES वॉलंटियर्स को भेजना है।
जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए कि आप ये काम बहुत दिल से शौक से कर रहे हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो इस काम में सबसे ज्यादा खतरा या बाधा किस चीज की आपको नजर आती है?
जहां तक तो बाधा का क्वेश्चन है, हम लोग को पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है जो हमारा वर्क और सेफ्टी को बड़ा सीरियसली लिया जाता है। कोई भी अगर कोई कॉन्फिडेंट नहीं है या ठीक से ट्रेन नहीं है, वी आर नॉट अलाउड टू डू द जॉब, कि जब तक हम उसको ठीक से कर नहीं पाएंगे। सो देयर आर अबाउट 10,000 volunteers in New South Wales SES and half of them are very very highly trained. So हर टीम में कुछ नए volunteer और कुछ senior volunteers रहते हैं।
और अंत में कुछ और आप बताना चाहेंगे सुनने वालों को, how to be careful या किस तरह से एहतियात बरतें?
तो हमारी safety हमारे अपने हाथ में है। जितना हम जागरूक रहेंगे कि हमारे आसपास क्या है उतना अच्छा है। देर आर SES के हिसाब से स्टॉर्म के लिए आपके लिए 4 स्टेप्स जरूरी हैं। पहला कहते हैं कि आप के नो योर रिस्क और अपने आसपास के रिस्क के बारे में जागरूक रहें। सो आप SES वेबसाइट पे जा सकते हैं, उसमें ऑलरेडी जितनी भी नई वार्निंग्स इशू होती हैं स्टॉर्म के बारे में वो उसके बारे में बता के रखेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका घर किसी रिस्क एरिया में है तो आप वेबसाइट है www.myfloodrisk.newsouthwales.org.au। उसके बाद अपने घर के आसपास सफाई रखनी जरूरी है, जैसे लूज एरिया, जैसे टेम्पोलिन्स हैं, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं बैकयार्ड में, बालकोनीज में, जब तेज हवा आती है तो मेक श्योर के वो उनको बांध के रखा है ताकि वो उड़कर किसी और चीज को डैमेज ना करें। आपके घर में जो पेड़ हैं उनकी जो ब्रांचेज आपके घर के ऊपर हैंग कर रही हैं, मेक श्योर के स्टॉर्म से पहले वो ट्रिम्ड हों। ये तो आपकी तैयारी के लिए है। उसके बाद आपको आपको एक प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है कि अगर बाढ़ आती है या स्टॉर्म से कुछ डैमेज हो जाता है तो आप उस केस में क्या करने वाले हैं, और
जी
वो आप प्लान क्रिएट करना ही जरूरी नहीं है। उसके बाद आप उसको प्लान को अपनी फैमिली, बच्चों के साथ और अपने पड़ोसियों से शेयर करें कि हमने ये प्लान किया है कि इन केस अगर बाढ़ हमारे घर तक आती है तो हमने कौन सा रूट यूज करना है और कहाँ पर हम जाकर रहने वाले हैं। उसके बाद एक इमरजेंसी किट तैयार करनी जरूरी है। उसमें जैसे कि टॉर्च, एक 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 रेडियो, आपके मैप्स, आपकी जरूरी चीजें घर से वो आपके साथ रहनी चाहिए ताकि आप जब घर छोड़कर जाएं तो एटलीस्ट आप स्टिल सेफ रहें।
जी, तो अंत में जाते जाते विनय कुमार जी, ये बताइए कि क्या हमारे समुदाय के लिए, जो मूल भारतीय लोग हैं, उनके लिए इस तरह की वॉलंटरी सेवाओं में हिस्सा लेना काफी महत्वपूर्ण है ना?
हाँ जी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक मल्टी कल्चरल कंट्री है और हम लोग सब इकट्ठे मिलकर रहते हैं। और जब हम डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं तो हम डिफरेंट तरह की स्किल सेट और नॉलेज लेकर आते हैं, और ये बहुत जरूरी है कि हमारी कम्युनिटी, हम अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें हर लेवल पर। इससे हम नॉट ओनली हम अपनी कम्युनिटी की बेटर हेल्प करेंगे बट ओवरऑल अपनी कम्युनिटी की इमेज भी ऊपर करेंगे।
जी, बहुत अच्छा विचार है। उम्मीद है कि आपकी बातें सुनकर बहुत से और नौजवान भी इसमें ज्वाइन हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया।
ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहां आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हम हैं।